श्रीपुत्रमत्र स्वरूपम् रूपमतस्याजगुरुपरिं मातुलिं गोष्ठवासिनी राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवासम् प्राप्तो यस्य पथिकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरक्तिशे भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणा यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत् द्वैपायनो विरहकाचरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि त्वैवास्मि त्वैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयनां चरणम् श्रीमद् भागवत से ध्रुव प्रह्लाद महाराज हनुमान और पांडवों तत्पश्चात उद्धव जी का परस्पर भक्ति का वैशिष्ट्य बतलाया। ध्रुव महाराज की भक्ति भक्ति तो थी किंतु शुद्ध भक्ति नहीं थी, सकाम भक्ति थी। भगवान का भजन किया किंतु अपने लिए, राज्य के लिए। प्रह्लाद महाराज जी अपने लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए और जगत का कल्याण करने के लिए मांगा। हनुमान जी उनसे भी श्रेष्ठ, सब समय श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। पांडव लोग उनसे भी श्रेष्ठ, भक्ति के बल पर सेव्य और सेवक, आराधक और आराध्य दोनों बराबर हो जाता है। हनुमान जी तक थोड़ा सा भक्त लोग नीचे हैं और सिद्ध राम इत्यादि ऊपर हैं। भक्ति जितनी ही प्रगाढ़ और प्रेम होती जाती है उतना ही सेवक जरा ऊपर उठने लगता है। अब हनुमान से बढ़कर अर्जुन हो जाते हैं। सुभद्रा अपनी बहन की शादी भी कृष्ण अर्जुन से करते हैं। एक पलंग पर सोते हैं, एक जगह खाते हैं, यहां तक कि उनके घर में नौकरी करते हैं कृष्ण। महीना नहीं लेते किंतु घोड़े धोते हैं, रथ चलाते हैं और सब काम करते हैं। किंतु इनसे भी बढ़कर के उद्धव की भक्ति है। अर्जुन से अपने सारे भेद नहीं खोलते किंतु इनसे कुछ कुछ भेद खोलते हैं। गोपियों की चर्चा कभी अर्जुन से नहीं की होगी, पांडवों से नहीं चर्चा करेंगे, किंतु उद्धव से उनके हाथों में हाथ लेकर के रोएंगे। हमारे माता पिता नंद यशोदा जी हमारे विरह में तड़फ रहे हैं, एक बार उनको सांत्वना दे आओ। अर्जुन ब्रज में नहीं जा सकते, उनका प्रेम इतना भी अधिक नहीं है, ऐश्वर्य भाव से कुछ भरे पड़े हैं। उद्धव जी ब्रज में जा सकते हैं, गए और वहां का भाव देखा, नंद बाबा का प्रेम देखा और अंत में गोपियों के निकट गए, गोपियों का इतना प्रेम देखा जो दंग रह गए। उनका प्रेम देख करके, उनका कृष्ण के प्रति विरह देखकर इन्होंने कहा कि आप लोगों के चरणों में हमारा कोटि कोटि बार नमस्कार है। अब तक को कृष्ण को मैंने समझा नहीं था, मैं समझता था कि वो मथुरा में है, किंतु अब मैं समझा कि यथार्थ में कृष्ण मथुरा में नहीं है, वो ब्रज में ही है, अब तुम लोगों के पास में है। मैंने देखा, मैं समझता था कि मैं संसार में सबसे बड़ा भक्त हूं, कृष्ण भी ऐसा हमारे लिए कहते हैं, ब्रह्मा जी हमारे उतने प्रिय नहीं, हमारे पुत्र होने पर भी शंकर जी हमारे अभिन्न तनु हैं, एक ही हम हरि और हर आत्मा हैं, किंतु वो भी हमारे उतने प्रिय नहीं हैं। लक्ष्मी जी हमारी अंकसाइनी हैं, किंतु वो भी हमारी प्रिय नहीं है। बलदेव जी हमारे भैया हैं, किंतु वो भी हमारे प्रिय हैं। यहां तक कि हमारा शरीर भी हमारा उतना प्रिय नहीं, मेरी आत्मा भी प्रिय नहीं, जितना ये उद्धव तुम प्रिय हो। और वो उद्धव ब्रज में आकर के गोपियों का प्रेम देखा, उनका विरह देखा तो प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, आशा महो चरण रेजुषा महा वृंदावने किमप गुलमलप औषधीना यह दुष्ट जन सजन आर्य पथंच हित्वा भेजे मुकुंद विज्ञान। प्रार्थना करते हैं और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि गोपियों की चरण भेण रेणु को पाने के लिए, स्पर्श करने के लिए मैं वृंदावन में गुल्म और लता हो जाता, इस पर गोपियां अपने पैरों की चरण की धूलि वहां पर देती और मैं उसे अपना सारा शरीर को अभिषिक्त कर लेता। हमारा ऐसा कौशभ्य गुरु कृष्ण जो विश्व ब्रह्मांड के रचयिता सृष्टा पालन करने वाले हैं, वो जिनके वशीभूत है, जैसा नचाती हैं वैसा कृष्ण नाचते हैं अपने वशीभूत किए हुए, अपने प्रेम प्रेमा भक्ति के बल पर। उनकी चरण धूलि के लिए वृंदावन में कहीं भी यदि गुण और लता बन जाता और गोपियां अपने चरण को उस हमारे ऊपर में रख देती, हमारा इससे बढ़कर के सौभाग्य नहीं होता। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेणम अभिघन, मैं नंद ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं मैं सबके चरण की रज की मैं वंदना करता हूं। मैं चरण की धूलि को ग्रहण करने में संभव हमारे लिए नहीं, मैं असमर्थ हूं, कभी भी मैंने इतनी तपस्या इतनी नहीं की है, आराधना नहीं की है जो गोपियों के चरण को छू सकूं, बल्कि वो धूलि जिस दिशा में है यहीं से मैं वंदना करता हूं। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम, यहां पर स्त्री नाम बहुवचन है, बहुत सी लाखों करोड़ों है, किंतु मैं लाखों करोड़ों की धूलि की वंदना नहीं कर सकता, इसलिए फिर यहां पर रेणु को एक वचन बतलाया गया, एक धूलि कणा, लाखों कोटि गोपियों की चरण धूलि की समस्त वंदना करने में समर्थ नहीं, एक मैं चाहता हूं। कौन सी गोपी, कोई स्पेशल गोपी होनी चाहिए जो समस्त गोपियों में मुखिया है, तो वो कौन है मुखिया गोपी, अनाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर। राष्ट्रस्थली में कृष्ण अंतर ध्यान होने पर एक गोपी को अपने साथ ले गए और निश्चित रूप में इसने भगवान की अधिक आराधना की है, जिसके वशीभूत में कर एक गोपी को ले गए। वो गोपी कौन एक है, भागवत में नाम नहीं दिया, दिया इसी श्लोक में नाम दिया उनका, लोग कहते हैं कि भागवत में राधा जी का नाम दिया, अरे अंधे तुमको आंखें नहीं है जो देखोगे, सर्वत्र राधा जी का नाम, जैसे रामायण में तुलसीकृत रामायण में वाल्मीकि रामायण में राम प्रत्येक श्लोक में प्रत्येक चौपाई में रा और म किसी न किसी रूप में जरूर है, जैसे जब रामायण बना वाल्मीकि तो 100,000 श्लोक और 100,000 लोग सुनने के लिए, लोग अपनाने के लिए देवता दानव और मनुष्य तीनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। शंकर जी आ गए, बोले जी भाई झगड़ा मत करो, हम बांट देते हैं। 1,00,000 श्लोकों को तीनों को बांट दिया बराबर बराबर, तो 33,000 मिल गए और कितना बच गया?
1,000।
अब उसको भी 3 भागों में विभाग कर दिया, तो अब कितना कितना हो गया?
333।
फिर भी 1 श्लोक बच रहा है। उन्होंने कहा कि 1 श्लोक में 4 चरण होते हैं, अनुष्टुप छंद, तो एक एक बांट दिया तभी 1 चरण रह गया। 1 चरण में आप अब क्या किया जाए, उसके लिए झगड़ने नहीं, झगड़ो मत। 1 चरण में 8 अक्षर होते हैं, तो 2-2 अक्षर दे दिया, तो बाकी कहा रह गया 2 अक्षर। कभी अब मैं नहीं बोला, बहुत परिश्रम मैंने किया है, ये 2 नाम, 2 अक्षर क्या है, रा और म। इसलिए ऐसा कहीं नहीं है, कोई भी चौपाई नहीं बनेगी यदि उसमें र अ म नहीं रहेगा, कहीं नहीं कहीं जरूर रहेगी। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में ऐसा कोई श्लोक नहीं है जिसमें राधा जी किसी न किसी रूप में नहीं है। आराधना अनाराधितो नूनम, आराधितो आराधितो, राधितो आ गया ना, ये राध शब्द राधा शब्द से ही बना है। आराधना, राधा जी जो कुछ करती हैं उसको कहते हैं आराधना। क्या करती हैं? कृष्ण की आराधना करती हैं, इसलिए आराधना शब्द बना उससे, रूप उसका है वो श्रीमती राधिका जी का नाम, राधा से आराधना। आराधना शब्द से राधा नहीं बना, वो रूप शब्द नहीं है, आराधना वो क्रिया है। इसलिए आराधितो श्रीमती राधिका ने किसकी आराधना की है उस श्लोक में तो ऐसा देखा है। ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है कौन? ये स्वयं कौन? एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वही समस्त अवतारों के अवतार, वही कृष्ण केशव धीत राम शरीर जय जगदीश हरे, केशव धीत नर हरि रूप, केशव धीत राम शरीर, केशव धीत भृगुपति रूप, वो सब वही है। किंतु जीव ही भी वो कृष्ण जीव नहीं है, जीव उनसे निकला है, ये तो सब एक है, यहीं पर कुछ गड़बड़ हो जाती है। हम भी ब्रह्म है, हम भी कृष्ण है, यह गलत है, होना चाहिए मैं उनका दास हूं। किंतु राम निसिंह इत्यादि स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण ही वो है। इसलिए उधर जी प्रार्थना कर रहे हैं तो कौन सी गोपी श्रेष्ठ है, और भी रस रंस्यते सुरा। तब इसमें जो कहा गया है पहला श्लोक में, पहले श्लोक में जन्मना जन्माद्यत अन्वयादितरत अभिज्ञो स्वराज तेने ब्रह्म हृदय आद कवे मोयंत जत सूर्य तेजो वाय मृदाम जत्र विनिमयो तिसर्गो अमृषा धामना सैन निरस्त कोहकम सत्यम परम धीम। यह कौन है? कौन? तेज, तेज माने क्या? शक्ति, शक्ति माने क्या? स्वरूप शक्ति। यह स्वरूप शक्ति कृष्ण की कौन है? यह राधा जी, उस राधा जी के साथ में अपने नित्य धाम में, ब्रज धाम में जो नित्य वहां पर लीला विलास पारायण है, वही सत्यम परम धीम रही, वही सत्य स्वरूप वो है, अपनी शक्ति के सहित उसको मैं ध्यान करता हूं, उसको प्रणाम करता हूं। इसमें भी राधा जी का है, ऐसा कोई श्लोक नहीं है। पहले श्लोक में जो आया जन्मादस्य जता माने क्या? जन्म स्थिति भंग जिनसे ये सारे विश्व का होता है, किससे होता है? कृष्ण से होता है। और एक दूसरा अर्थ है जन्मादस्य जत, जन्म आदि रसस्य जत, आदि रस किस को कहते हैं? आद्य श्रृंगार रस को आद्य रस कहते हैं। श्रृंगार रस का जिससे जन्म होता है, किससे? जिस कृष्ण से, रसो वैसा। रस के मूर्तिमान विग्रह कृष्ण है, उनसे यह रस इत्यादि उत्पन्न होता है। अतः प्रेमा भक्ति उससे प्रकाशित होती है, श्रृंगार रस जिससे उत्पन्न होता है। किंतु यह भी ठीक नहीं, यह भी कुछ अंशिक। जन्मादर्श जतः, जब तक राधा और कृष्ण जब तक मिलेंगे नहीं तब तक आद्य रस श्रृंगार रस होगा नहीं, अकेले कृष्ण से श्रृंगार रस नहीं होगा, संभव नहीं तो वह निराकार निर्विशेष ब्रह्म बन जाएंगे। यदि उनके लीला परिकर न रहे, विशेष करके श्रीमती जी उनकी शक्ति नहीं रहे, तो निर्विशेष ब्रह्म केवल बन जाएंगे, कुछ नहीं करते, ठूठे ब्रह्म, उनमें दया तक नहीं है। दया एक शक्ति है, कृपा एक शक्ति है, कृपा स्त्रीलिंग है। वो यदि कृष्ण में नहीं रहेगी तो निर्विशेष निराकार निष्फुर ब्रह्म बन जाएंगे। जब शक्ति उनमें रहेगी तब वो निर्गुण ब्रह्म कहलाते हैं। निर्गुण असगुण दो नहीं है, एक ही है। अपराकृत गुणों से जो परिपूर्ण है वो सगुण ब्रह्म है, और प्रकृति से अतीत होने के कारण उनको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, किंतु उनका रूप है, नाम है, सब कुछ है। तो जब तक शक्ति नहीं रहेगी तब तक श्रृंगार रस नहीं होगा। कृष्ण अकेले नित्य करके रास नहीं कर सकते, रास के लिए बंसी बजाई, किसको बजाया? जगौ कलौ बाम दिशा मनोहर, कलौ कल बाम दिशा, चतुर्थ अक्षर स्वर व्यंजन में वो क्या है? अ आ ई दीर्घ ई, तो क में ई लगा दीजिए तो क्ली हुई। और मनोहरा, मन को हरण करने वाला कौन है? चंद्र, अनुष वो चंद्र, अर्थात चंद्र बिंदु। अब ये होकर के हो गया क्लिंग, क्लिंग से सभी लोग समझ रही हैं, राजा जी समझ हमको बुला रहे हैं, लज्जा जी सोच रही हमको बुला रहे हैं, सारी ब्रज की सखियां। अजग अजगमऊ अन्नो अल्लम अलक्षितो जमा, सबने सोचा जी केवल मैं ही जा रही हूं और सभी चल रही हैं, सभी कृष्ण के पास में पहुंचे, सबको बुलाया। गोपियों ने नहीं बुलाया, जिसको जरूरत है वो उसने बुलाया। आत्माराम के जो मूल्य हैं, आत्मकाम है, आज उनको प्यास लगी, भूख लगी रस पीने की, तो उन्होंने सबको बुलाया। यदि भागवत नहीं प्रकट होता तो भगवान रसमय हैं, बड़े कृपालु हैं, ये सब चीजें नहीं होती, इसलिए भागवत की सृष्टि है। इसलिए आद्यरस अश्रृंगारस की जिससे उत्पत्ति हुई है वो कौन? राधा और कृष्ण, ये जुगत, यही सत्यम परम अधिमयी। और अंत में भी श्रीमद भागवत के अंत में उसमें भी कहा गया सत्यम परम अधिमयी, जहां से उपक्रम हुआ वहीं से उपसंहार। इसलिए यहां बाबा उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं, एक गोपी, कौन गोपी? श्रीमती राधिका जी, उनकी एक चरण रेणु यदि मैं मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए, इसलिए उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए उद्धव जैसे महान अनुभव लोग हैं, नारद हैं और हैं, सबके आराध्या कौन है? कृष्ण नहीं बल्कि ये श्रीमती राधिका जी। भागवत में राधा जी को या गोपियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए इतना नमस्कार कहा गया है, कृष्ण के लिए उतना नहीं कहा गया है। यह भागवत ग्रंथ गोपियों के लिए, राधिका जी का लिए है, और जितने पुराने हैं वो सब कृष्ण के लिए हैं, अवतारों के लिए हैं और दूसरों के लिए। किंतु श्रीमद् भागवत ग्रंथ क्या है? कृष्ण नंद और यशोदा जी के चरणों में गिर रहे हैं और वो उनको काम को गर्म कर रही। कृष्ण नहीं, नंद यशोदा जी कभी कृष्ण को प्रणाम करेंगे सस्तान हनुमान जैसा। श्रीराम सुबलाए कृष्ण के पास में, अरे सारे सो रहा है, सारे से बातचीत करेंगे, गलबहियां लगा देंगे और जूठा हुआ खा रहे हैं और उनको खिला देंगे। हनुमान इत्यादि उद्धव इत्यादि के लिए संभव पर नहीं है ये सब। और गोपियां कहेंगी हमारा पैर जरा नाचने नाचते नृत्य करते 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 जरा थक गया है, मोहन जरा इसको दबा तो दो, हमारे नृपक्ष तक करके गिर गए हैं और कृष्ण आएंगे। कभी उठ जाएंगे तो मनाने आएंगे। ये सब प्रेम रस है। उद्धव जी इसका साधन नहीं कर सके, दो चार दिन या तीन महीने तक ब्रज में रहे, देखा अद्भुत, किंतु वृंदावन के तृण भी नहीं बन सके, लौट गए मथुरा में। ब्रज का भाव उनके हृदय में नहीं आया। ये कोटि कोटि लोगों को महाप्रभु जी वही कृष्ण गौरूप धारण करके राधा जी का भाव और कांति लेकर के आए आज से 500 वर्ष पहले। और जो सामने आया उसको ये प्रेम दुर्लभ प्रेम बांटा नाम संकीर्तन के माध्यम से। वही कृष्ण राधा जी का मूड लेकर के भाव लेकर के वितरण किया विश्व में। अब हम चलते हैं कृष्ण का जन्म थोड़ा सा, उनकी थोड़ी सी आज शायद अभी थोड़ा सा एक आध घंटा समय है और कल का शायद शाम को है, इसलिए एक प्रसंग में भी पूरा प्रसंग नहीं बतला सकता, काफी समय लग जाएगा समझाने में अच्छी तरह से। इसलिए मैं थोड़े से जब कृष्ण का जब भागवत आया तो जन्म के संबंध में थोड़ा सा बतला रहा हूं। कृष्ण का जन्म किस लिए हुआ, गीता इत्यादि शास्त्रों में ऐसा लिखा है और भी शास्त्रों में लिखा है, रामायण में भी लिखा है, तुलसीकृत रामायण में भी ऐसा ही लिखा गया है। सर्वत्र क्या लिखा गया है, मैं धर्म की प्रतिष्ठा के लिए परित्रणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवान् चुके, मैं धर्म की संस्थापना और इसके लिए दुष्टों का दलन करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए परित्रणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवान् चुके। यह धर्म क्या है थोड़ा सा समझिए, जिसकी रक्षा करने के लिए कृष्ण आए। साधु लोग गृहस्थ भी हैं त्यागी भी हैं, यदि भगवान का स्मरण करते हैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं अपने माता पिता के प्रति सेवा की भावना रखते हैं पत्नी को दासी और गुलाम नहीं समझ करके अर्धांगनी समझते हैं और क्या धर्म साधर्मणी कहते हैं, अपने जीवन का एक पहलू वो और दूसरे दोनों मिलकर के चलते हैं, अपने पुत्र और कन्या के प्रति अपने दायित्व को निर्वाह करते हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि आए उसका स्वागत सत्कार करो, पितृदेवो भव मातृदेवो भव, ये सब जो चीजें हैं। घर में कोई आए दुत्कारो मत, उसका आदर करो, हो सकता है कि उसी अतिथि के रूप में भगवान भी आ जाए, कोई नारद ब्रह्मा इत्यादि आ जाए, इसलिए ऐसा मत करना। हमारे भारतवर्ष में कोई लौट करके किसी घर से नहीं जाता था, कुछ नहीं हो मीठी वाणी और मीठा पानी तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, वो दे करके सबको संतुष्ट रखते, यहां तक कि अपना शरीर भी शिवी की भांति उत्सर्ग कर देते थे। यह है वर्णाश्रम धर्म। जब वर्णाश्रम धर्म नष्ट होने को आया, कैसे द्रौपदी जी की लज्जा जा रही है, दुष्ट सब कर्ण दुशासन शकुनी दुर्योधन ये सभी मिलकर के वर्णाश्रम धर्म की हत्या कर रहे हैं, अपने ही भाई की पत्नी होनी चाहिए मैया, होनी चाहिए बहन, होनी चाहिए कन्या,
और उसको भरी सभा में नंगी करके अपने जंघे को हटाकर कपड़े हटाकर उस पर सभा भरी सभा में जहां उसका बाप बैठा है, उसके बाप के बाप का बाप पितामह भीष्म जी बैठे हैं, उनका गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं और जिसकी पत्नी है वो पांचों पांडव बैठे हुए हैं, उनका अपमान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वर्णाश्रम धर्म कहां रहा? किस वर्णाश्रम धर्म में स्त्रियों की स्त्रियों का आदर नहीं है वो वर्णाश्रम धर्म धर्म नहीं है। यहां पर साधु संतों का आदर नहीं है, गायों का आदर नहीं है, माता पिता का जिस वर्ण में और धर्म में कोई आदर नहीं है समझो जैसे वो बेकार का है। इसलिए कृष्ण ने देखा ये सब जितने भी है कर्ण इत्यादि उस समय के जितने भी राजन्य वर्ग हैं ये सब असुर थे, क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के वर्णाश्रम धर्म को नष्ट कर रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म का प्राण है भगवान का भजन, चाहे गृहस्थ और त्यागी हो, किंतु ये भी धर्म उठ गया। घरों में तुलसी नहीं, जिस घरों में उसका आदर नहीं है, ठाकुर जी का शालग्राम शिला हो, गोमती शिला हो, श्री रामचंद्र जी हो, कृष्ण हो या और कोई हमारे भगवत अवतार की जहां पर पूजा नहीं होती, जहां पर संत नहीं जाते हैं वो श्मशान भूमि है। तो इसकी प्रतिष्ठा जब देखा जैसे ये सब असुर लोग जन्म लेकर के इसके ठीक विपरीत काम कर रहे हैं, इसलिए इसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इसलिए असुरों का संहार करने के लिए जरासंध, कंस, चेदीराज, शिशुपाल, दुर्योधन इत्यादि, कर्ण, शकुनी, ये सब राक्षस है, असुर है। मनुष्य में मनुष्य की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, देवता और असुरों में क्या अंतर है? तौ भूत सर्वो लोकेश में दैव आसुरे वच विष्णु भक्तो भवित दैव आसुर। जो भगवान का विष्णु का भक्त है वो तो देवता है और जो उसके ठीक विपरीत है ऐसा शरीर लेकर के भी बहुत सुंदर जरासंध इत्यादि शिशुपाल बड़े सुंदर थे, दुर्योधन भी बहुत सुंदर और तगड़ा था, भीम से कम नहीं था, किंतु ये असुर है। इसलिए जो भगवान का भजन नहीं करेगा उनका सत्ता स्वीकार नहीं करता। तो वर्णाश्रम धर्म का प्राण ये विष्णु की सेवा, कृष्ण की सेवा, नारायण की सेवा एक ही चीज है, इनकी सेवा जो नहीं करता वो वर्णाश्रम धर्म नष्ट है। इसलिए असुरों को दंड देने के लिए, साधुओं को रक्षा करने के लिए कृष्ण का अवतार। और थोड़ा सा ऊपर चलिए, वर्णाश्रम धर्म में कर्ण कितना दानी था, मरते समय भी एक ब्राह्मण पहुंचा वो जैसे हमारी लड़की की शादी है धन नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं तो भी समय में हमारे हाथ पर टूटा हुआ इस रात है और मैं अब प्राण अब निकलने वाले हैं, मैं तुमको क्या कर सकता हूं, तो अभी आप कुछ कर सकते हैं। तो हमारा तो सब वैभव चला गया, सब पांडवों ने सब ले लिया, अब तो कुछ है नहीं, आपका मुख और दांत तो आपका है, दांत में आपका सोना लगा हुआ है, यही तोड़ करके देंगे हमारी लड़की की शादी पर। बस उठाया गदा और मारा और टूट गया दांत और लेकर के उसको दे दिए, दो तीन सोने के दांत लगे हुए थे, खुश होकर के चला गया। ऐसे ये दानी भी थे किंतु भक्तों का निराद और कृष्ण की बात नहीं मानने के कारण ये असुर कुल में गने गए। शंकर जी की पूजा करते थे ये लोग, जरासंध इत्यादि सब शंकर जी की पूजा करते थे, शिवोहम शिवोहम करते थे, शिवहम माने क्या, मैं शिव, अरे दुष्ट, शंकर जी की पूजा करके तो शंकर बनेगा और पार्वती देवी क्या बनेगी, बामा बनेगी। अरे जिसको तू मैया 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 कह करके तुम उनकी पूजा करता है पार्वती जी की और तुम शिव जो बन जाएगा तो शिव तो मैं तुम्हारी क्या लगूंगी, इसलिए खड़ग लेकर के उन्हीं का सिर मुंडन काटती है। तो ये लोग शिव जी की पूजा करने पर भी भगवत द्रोही होते हैं, भक्तों के द्रोही होते हैं, इसलिए पांडवों का इन्होंने विपक्ष में उनको मारने की चेष्टा की, इसलिए कृष्ण को आना पड़ा। एक तो ये हुआ। अब धर्म क्या है, एक तो ये बना समझा, इससे ऊपर प्रत्येक चीज का अपना धर्म होता है। पानी है, पानी का धर्म क्या है?
तरल
होता है। और पानी गर्म भी करो और आग पर दे दो तो उसे बुझा देगा, ठंडा भी रहेगा तो बुझा देगा। रस उसका धर्म है ना? जिस स्थिति में यहां तक कि बर्फ के रूप में जम जाएगा तब भी रस टपकेगा और आग को बुझा देगा, ये उसका धर्म है। आग का धर्म क्या है? जिस स्थिति में होगी वो जलाएगी ही, उसे मट्टी से भी ढक दो और आग उसके अंदर है तो उसमें से कुछ उष्मा आएगी। जीव का धर्म क्या है ये पहले देखा जाए। मैं हूं कौन? देख नहीं रहा है, हमारी दो आंखें हैं, ये शरीर मनुष्य का है, मैं मनुष्य हूं। अरे भैया तुम मनुष्य ही ये नहीं, ये कपड़ा है। वंशास जीर्णानी जथा विहाय नावान गृहणाति नरो पराणी। भाई ये कपड़ा है, पुराना हो जाएगा, ये बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। तुमको बदलना नहीं पड़ेगा, तुम लाख चेष्टा करेगा तभी बदलना ही पड़ेगा। इसलिए तुम आत्मा हो, तुम भगवान के पार्ट और पार्सल हो। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। जैसे भगवान सनातन है, जीव भी सनातन है, उनका अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी तन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज बने क्या? सह सह जायते। जब से कृष्ण भगवान है, राम जब से है, तब से ये जीव भी सहज उन्हीं के साथ में जन्मा है, इसलिए ये भी नित्य आनंदमय है, सनातन है, कभी नष्ट नहीं होने वाला, इसका जन्म मरण नहीं है। असुरों ने इन धर्मों को लुप्त कर दिया। मैं क्षत्रिय हूं, मैं शिशुपाल हूं, मैं दुर्योधन हूं, जो इच्छा तो कर लेंगे। द्रौपदी का हरण कर लाओ, दशरथ हरण कर लिया ना शुभ द्रौपदी को, पानी भरने के लिए गई काम्य वन में और अकेले जयद्रथ ने देखा। जयद्रथ कौन था? दुर्योधन की बहन का पति था। तो ये द्रौपदी की ननद लगेगी, ननद का ये पति लगेगा, तो भी तरह से भाई हुआ, किंतु उसको हरण करके ले आएगा, इसलिए उसको जल्दी से पकड़ करके और रथ में बैठा करके ले चलता। किंतु पांडवों को जब पता लगा, झट बाणों से उसे घेर करके पकड़ करके उसके दाढ़ी और मोच और चार पांच चोटियां रख करके अंत में द्रौपदी के कंधे छोड़ने से मारी देते। ऐसे दुष्ट लोग जो हैं आत्मधर्म को नष्ट कर दे देते हैं, कहते हैं कि यह शरीर मैं हूं, मैं पृथ्वी का राजा हूं। जैसे एक पागल शराब पी करके नाली के अंदर में गिर पड़ा है, कुत्ते उसका मुख धो रहे हैं, समझ रहे हैं ना, पैर उठाया मुख का मुख धोया और वो कहा मैं शहंशाह हूं। ठीक ऐसे दुर्गति इन लोगों की हो रही है। इसलिए आत्मधर्म नष्ट होकर के मैटेरियल जगत का खाओ पियो मौत करो, इतना पाक पियो शराब जाओ पतक न भूतले, जब तक कि पृथ्वी में नहीं गिर जाओ तब तक पीते रहो। तो इस तरह से इतना पी लो, पीते पीते न मरी जाओ, फिर उठने का प्रश्न ही नहीं रहे। तो ये संसार शायद इसीलिए बना, संसार सब कुछ खाने के लिए बना है। गाय भी खाने के लिए बनी है, जो मैया है जो दूध देती है वो भी खाने के लिए है, सुअर भी हराम वो भी खाने के लिए बना है। बस उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं सब खाने के लिए, केवल एक चीज बात छोड़ करके, वो है पतंग। पतंग को नहीं खा सकते, नहीं तो बाकी सब मानो उनके खाने के लिए। और जलचर में सभी उनके खाने के लिए, केवल काठ की एक नौका है वो उनको नहीं खा सकते, नहीं तो जलचर सभी उनके खाने के लिए। स्थलचर में सब कुछ खाने वाले उनके सब खाने के लिए ही मानो बना है, किंतु चौपाई एक नहीं खा सकते। चौपाई मैंने जानते हैं, अरे चारपाई या चौकी, और बाकी सब उन लोगों का खाने पीने के लिए ये सब बना हुआ है। इसमें आत्मधर्म नहीं है। इस आत्मधर्म के लिए जो हम चेतन आत्मा हैं, तुम्हारा भी शरीर है, ये शरीर नहीं है, ये कपड़ा है, ये बदल जाएगा। जब तक तुम भगवान का भजन नहीं करेगा, आत्मधर्म में प्रतिष्ठित नहीं होगा, तब तक तुम्हें सुख और शांति नहीं होगी। इस चीज की प्रतिष्ठा के लिए कृष्ण आए, असुरों को दमन करके गीता में जो दिव्य संदेश दिया यही है, मैं आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, ममई वांसो जीवलोके जीव भूत सनात। और मैं कौन हूं? खर और अखर दोनों पुरुषों से निराला, सबका उपास्य मैं पुरुषोत्तम हूं। ये पुरुषोत्तम कौन है? कृष्ण है। खर कौन है? बद्ध जीव जो है वो खर है। खर माने अपने स्वभाव से क्षरित होना। हम भगवान के अंश होने पर भी, नित्य आनंदमय अजन्मा होने पर भी हम समझते हैं कि यह शरीर है, इसलिए अपने स्वभाव से नीचे उतर आए हैं, इसलिए हम खर हैं। अक्षर कौन है? क्योंकि गिरते नहीं है, वो कौन है? परमात्मा इत्यादि अक्षर वस्तु है। ओम इति अक्षर। किंतु इसे भी उत्तम कौन है? पुरुषोत्तम। वो कौन है? वो अपने लिए कहते हैं मत्तः परतरम नत किंचित दस्य, हमसे बढ़कर के कोई नहीं है। और वही श्रीमद् भागवत कह रही है एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान। वही परब्रह्म है, वंदे नंद ब्रजे स्थित अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गो ब्रजौ प्रशाम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। देखो अभी से आदि क्या कहें कृष्ण के लिए, परम ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रह्म सब कुछ ये है, मूल है ये कृष्ण। इस चीज को समझो, इसलिए गीता में कहा गया कि वही सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम माम एकम, आंगुली से देख करके कहे माम एकम, माम एव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तर। हमारा एकमात्र जो शरण ग्रहण करेगा बस वही माया को तर सकता है, दूसरे नहीं तर सकते हैं। रपट लपट झपट कर बस जन्म मरण के माला में पड़े रहेंगे। इस चीज को अच्छी तरह से ये गीता का है। ये तो हुआ आत्मधर्म की रक्षा, इसके लिए कृष्ण है। जब नहीं आते और गीता इत्यादि का ज्ञान नहीं कहते और श्रीमद् भागवत से उद्धव संदेश नहीं कहते तो धर्म का आत्मधर्म का लुप्त हो जाता। और आज जैसे अमेरिका इंग्लैंड भारत इत्यादि सभी पाकिस्तान जैसे बम बना करके एक दूसरे को जीत करके पृथ्वी को भोग करना चाहते हैं, यही दुर्गति असुरों का काम है। ये तो हुआ दूसरा। और तीसरा धर्म की रक्षा करने के लिए क्या? प्रेम ही जीव मात्र का धर्म है, इसी को कहते हैं प्रथम अवस्था में इसका नाम है भक्ति। और यही बढ़ करके भक्ति से साधन भक्ति भाव भक्ति अंत में प्रेम भक्ति होती है। प्रेम भक्ति का विनाश हो रहा था, लोग अपने लक्ष्य में अपने काम में चूर हो रहे थे। कृष्ण यदि नहीं आते तो हिरणी उनका बड़े प्यार के साथ में उनके बंसी की आवाज पर नृत्य कर रही हैं, उनके सामने प्रणय की भिक्षा मांग रही हैं। अहो क्या है? धन्यास्म मूढ़ मतयो हरण्ययेता जानंद नंदनो उपास्त विचित्र वेशम आकरण रेणु सहितम सह कृष्ण सारा पूजां दधौ प्रणया। कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, इतना मधुर सब हिरणे आ रही है और उनके सामने प्रणय की भीख मांग रहे। प्रणय माने प्रेम। एक ये देखिए मयूर नृत्य कर कहां जहां कृष्ण को देखा और बंसी बजी, मयूर नृत्य करने लगे, कोयल कुहू कुहू करने लगी, सारा वातावरण एकदम बदल जाता है। जीव का धर्म एकमात्र प्रेम है। कोई हम हिंदू हैं, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई बौद्ध है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, किंतु कोई ऐसा है जो सुख नहीं चाहता, कोई बौद्ध कहेगा या ईसाई या मोहम्मदन या हिंदू, जो हम सुख नहीं चाहते हैं, सभी सुख चाहते हैं। अच्छा, सुख कैसे मिलेगा? मिलेगा कैसे? सुख की सारी सामग्रियां हमारे हिरण्यकश्यपु के पास में थी, क्या नहीं था? सुंदर वज्रसा युवक शरीर और पृथ्वी का महाराजा, क्या नहीं? रावण को लंका सोने की बनी थी और उसके यहां जितना मदिरा था विश्व का मिला करके भी उसके मदिरा के बराबर नहीं होगा। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती उनको, और एक एक से सबल रणधीरा, बड़े बड़े पलवान मेघनाथ जैसे लोग, अक्षय कुमार, बड़े बड़े वीर रणपुंगव। किंतु हुआ क्या? सभी मारे गए, दिया बाती जलाने के लिए घर में कोई नहीं रहा। इसलिए प्रेम चाहिए, समस्त वैभव होने पर प्रेम नहीं रहेगा तो वो घर सुखी नहीं रह सकता। एक बाघ दूसरों को मार करके खा जाता है, अपने बच्चों को प्यार करता है कि नहीं? बाघनी को प्रेम करता है कि नहीं? एक गैया के बछड़े को देखिए, यदि गैया को कहीं ले जाना है ना तो बछड़े को गोदी में ले लो, चल पड़ो, गैया पीछे पीछे डकते भी चलेगी। इसको कहते हैं प्रीति। ऐसा कौन संसार में है प्राणी, चाहे मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन ईसाई, जिसके अंदर में किसी न किसी प्रकार से एक प्रेम का कुछ भाव न हो? यदि प्रेम नहीं है तो सुखी नहीं रह सकता। इसलिए बाघ में भी सांप में भी वो सांपनी के साथ में बड़े प्रेम के साथ में जोड़ा खाता है, ऐसा लिपट जाता है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसके अंदर में कुछ न कुछ प्रेम का भाव विकृत रूप में हो चाहे शुद्ध रूप में हो, ना रहे। इसलिए यह प्रेम ही जगत का धर्म है। जब हम समझ जाएंगे जो सुख नहीं मिलेगा तो वो आदमी मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। हमारे यहां ईश्वर विश्वास है, इसलिए हमारे यहां कम आत्महत्याएं होती हैं भारत में, और उसमें भी जो भगवान के ऊपर में विश्वास करने वाले हैं वो तो कभी आत्महत्या नहीं करते। भारत में रहने पर भी जो भगवान पर विश्वास नहीं करते वो रेलगाड़ी के नीचे कट मरते हैं। कोई कुछ किसी की स्त्री ने उसके देखते ही देखते किसी दूसरे से लव कर लिया तो कहा जब जी करके क्या होगा। किसकी स्त्री ने ऐसा देखा कि हमारा पति हमको प्यार नहीं करके दूसरों को प्यार दे रहा तो वो मर गई। किसी बच्चे ने देखा हमारे पिताजी ने हमारे किसी काम के लिए दंड दिया, एक थप्पड़ लगा दिया या फेल हो गया तो बस मैया ने कुछ कर दिया, जितना रुपया खर्चा किया और तुम फेल हो गया, पढ़ा लिखा नहीं तो बस सुसाइड कर लिया, बात बात में। तो जहां पर ईश्वर विश्वास होगा यहां पर नहीं हो सकता। इसलिए इसमें प्रेम सब में है, ऐसा कोई नहीं जो सुख नहीं चाहता। ये सुख का दूसरा पर्याय अचीव शब्द नाम है प्रेम। यही प्रेम शुद्ध रूप में यदि भगवान के साथ होता है तो इसको पहली अवस्था में भक्ति, दूसरी अवस्था में भाव भक्ति और तीसरी अवस्था में इसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। ये भगवान को भी कंट्रोल कर लेगा, उनको भी बुला लेता है, भगवानों की जीवों की प्रार्थना से, भक्तों की प्रार्थना से जगत में आ जाते हैं ये भगवान। इसलिए जी मात्र का यह धर्म है प्रेम। उसमें प्रेम का सत्यानाश हो रहा था, लोगों में प्रीति नहीं थी परस्पर। ये दोनों भाई भाई थे कौरव और पांडव, और लड़ रहे हैं किस लिए? दुर्योधन कह रहा है ये सारी मेरी संपत्ति, हमारा पिताजी राजा था और हमने तुमको जीत लिया है, वो जुआ खेलवाया ना और उसमें सबको जीत लिया बेईमानी के साथ। इन्होंने कहा कि 5 गांव तो दे दो, सुई का नोक भी नहीं मिला। कृष्ण ने चेष्टा की सुलहनामा कराने के लिए किंतु तो भी नहीं हुआ। नहीं, भगवान की भी बात नहीं है, बात यह थी धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा माने प्रेम की, कैसे जगत में फिर से प्रेम का वितरण किया जाए। इसीलिए कृष्ण आए, और आप जानते हैं नरकासुर ने उस समय में जितने बड़े बड़े राजा लोग थे उनकी राजकुमारियों को उनके सामने उनको प्राप्त करके पकड़ लिया और जितनी नौ विवाहिता सुंदरी तरुण स्त्रियां थी सबको भी पकड़ लिया और लेकर के वहां पर अपने राज्य में ले लिया। इस दिन को मैं इन सबके साथ में शादी करूंगा। साधु माने क्या, शादी की बात ही नहीं, रावण पकड़ लिया और अपने घर में ले गया, विवाह करने की कोई बात नहीं, कामना की तृप्ति। कृष्ण ने सुना नारद जी के से और वहां पर गए, चक्र से सबको काट पाट करके सब स्त्रियों का उद्धार किया, कहा जैसे तुम लोगों को घर में पहुंचा दूं, जैसे राजा की लड़की राजकुमारी हो वहां पर पहुंचा दूं, जिसके राजा के तुम स्त्री हो वहां पर पहुंचा दूं। उन्होंने कहा जब हमारी मैया हमारे बाप अब हमको नहीं रखेंगे, हमारी संस्कृति नहीं आई, किस चली आए, एक मुसलमान ने एक स्त्री को छू दिया बस अपवित्र हो गई। कैसे अपवित्र हो गई? आजकल कुछ इस विषय में तो ठीक है, यदि कोई जबरदस्ती किसी को यदि छू भी दे अपवित्र कैसे हो जाएगी? हम इसको नहीं मानते हैं, हम कृष्ण नाम सुना करके उसको पवित्र कर लेंगे, बस कृष्ण नाम सुनो अपवित्र हो जाओ, जबरदस्ती तुम्हारा वो भी नष्ट भी हो गया है कोई भी बात नहीं है, ये तो शरीर है, तुम आत्मा से पवित्र हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, महाप्रभु जी ऐसे ही करते थे, यदि किसी को मुसलमान जबरदस्ती बना दिया है वो तड़प रहा है रो रहा है, अच्छा कृष्ण नाम करो तो कृष्ण पवित्र हो गए जाओ। ये सब प्रेम की चीज है, ये प्रेम धर्म लुप्त हो रहा था, इसको पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए जगत में आए। उन स्त्रियों को कहा, उन्होंने कहा कि हमारे माता पिता तो नहीं लेंगे, हमारा पति भी नहीं स्वीकार, अरे राम